हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 11वां अध्याय श्लोक संख्या 35 एंड 36। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोवीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीतांभरधरुणबिम्बफल धरोष्ठा पुरीन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्र क्रेशात् परं किमपि तत्व अहं न जाने। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति देव ये स्तवे वेदे सांगपत क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तत् गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विधो सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं कुरुतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयति किरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद 11वां अध्याय जिसका शीर्षक है भगवान कृष्ण का द्वारिका में प्रवेश, श्लोक संख्या 35। सुत गोस्वामी कहते हैं, स एष नरलोकेस्मिन् अवतीर्ण स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा। स एष नरलोकेस्मिन् अवतीर्ण स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा। स एष नरलोकेस्मिन् अवतीर्ण स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा। इस श्लोक में सूत गोस्वामी भगवान की एक अद्भुत लीला के विषय में बता रहे हैं। वैसे तो भगवान की अनेकों लीलाएं हैं, परंतु उनमें से एक लीला बहुत ही अद्भुत और विचित्र है और आज तक लोग विचार कर रहे हैं कि भगवान ने इतनी सारी स्त्रियों के साथ विवाह क्यों किया, है ना? एक के साथ, दो के साथ, 20 के साथ, 100 के साथ करते, परंतु यहाँ तो 16,000 रानियों के साथ। तो ये बात ऐसी है कि दिमाग को चक्कर में डालने वाली है। तो भगवान की इसी विचित्र लीला के विषय में यहाँ पर सूत गोस्वामी चर्चा करें, क्योंकि कुछ लोगों के मन में ऐसा विचार आता होगा, जो भौतिकतावादी लोग होंगे वो भगवान को प्राकृतिक समझते होंगे, वो भगवान के दिव्य जन्म और दिव्य कर्मों के विषय में नहीं जानते होंगे। तो भगवान के बारे में सोचते ही उनको लगेगा कि ये कोई प्राकृतिक व्यक्ति जैसा है, ये तो ऐसा लगता है जैसे कोई साधारण व्यक्ति हो, जैसे कोई साधारण स्त्री के बस में रहने वाला व्यक्ति होता है ना, जो स्त्री से सुख चाहता है, या ऐसा लगता था। और भगवान भी रहते थे उन स्त्रियों के साथ, तो ऐसा लगता था जब भगवान विवाह कर रहे थे ना, अभी जब हम 10वें स्कंद में भगवान के विवाह की लीलाएं पढ़ेंगे, तो भगवान क्या कभी एक स्त्री वहां से लेकर आ रहे हैं, कभी एक स्त्री वहां से लेकर आ रहे हैं, कभी एक स्त्री वहां से लेकर। तो कहने वाला जो भौतिक प्रकृति के अंदर जो व्यक्ति होगा, जो साधारण बुद्धि रखेगा, जो भगवान की दिव्यता को नहीं समझेगा, तो क्या सोचेगा, ये तो प्राकृत व्यक्ति की जैसा करता है, साधारण व्यक्तियों की जैसा कर रहा है, जिसके मन में काम वासना हो, जो काम वासना को तृप्त करना चाहता है, या जिसको कोई अभाव की अनुभूति हो। जो व्यक्ति ये सोच रहा है कि स्त्री होगी तो घर संभालेगी, घर में रहेगी, मुझे सुख मिलेगा, लेकिन भगवान कोई साधारण प्राकृत व्यक्ति नहीं है, भगवान आत्माराम है। आत्माराम का क्या मतलब होता है कि भगवान को अपने आनंद के लिए किसी बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है, भगवान स्वतः आनंदमयी है। एक जीव को आनंद प्राप्त करने के लिए किसी न किसी अन्य वस्तु की या अन्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन भगवान को किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, भगवान स्वयं स्वतः आनंदमय है, आत्मा में रमन करते हैं। तो फिर उन्होंने इतनी सारी लड़कियों के साथ विवाह किया क्यों, आनंद प्राप्त करने के लिए नहीं? ये भगवान की लीला है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कहते हैं स एष, एष मतलब वही भगवान, जिस भगवान की अभी बात कर रहे हैं, जिसे हम लोगों ने पिछले श्लोक में जिस भगवान के विषय में कहा था, चलापि अश्विन जहाति कहिचित, कि वो लक्ष्मी जो कि सदैव से चंचल स्वभाव वाली है, वो भी भगवान के चरण कमलों को छोड़कर किधर नहीं जाती। वही भगवान पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए संसार में आते हैं और अधर्मियों का विनाश करते हैं, दुष्टों को नाश करते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं, पृथ्वी का भार हल्का करते हैं। स एष वही वाले भगवान नरलोकेस्मिन, नरलोकेस्मिन मतलब इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण स्वमाया, अवतार लेते हैं कैसे, अपनी माया से अवतार लेते हैं। स्व मना ये उनकी अपनी माया है, ये उनकी निजी शक्ति है। और फिर क्या करते हैं, रेमे स्त्री रत्न कूटस्थो, रेमे मतलब वो रमण करते हैं, भोग करते किसके साथ, स्त्री रत्न मतलब वह स्त्री जो भगवान की पत्नी बनने के उपयुक्त है। वो स्त्रियों में शोमणी यानी जितनी भी स्त्रियां हैं, सबसे संसार की सबसे ज्यादा सुंदर स्त्रियों के साथ वो रमण करते हैं। और कूटस्थो मतलब मध्य में उनके साथ रमण करते हैं। तो भगवान कैसे लगते हैं, भगवान प्राकृतो यथा, भगवान एक प्राकृतिक व्यक्ति के जैसे लगते हैं, एक संसारी व्यक्ति के जैसे लगते हैं। तो वो व्यक्ति जहाँ यहाँ पर एक ऐसा प्रश्न जैसा लग रहा है कि जो व्यक्ति स्त्रियों में ऐसे सुख मान रहा है वो तो प्राकृतिक वस्तु जैसा व्यक्ति जैसा है, वो भगवान कैसे हो सकता है। इसका उत्तर तो आगे सुत गोस्वामी देंगे, पहले अनुवाद देखिए। भगवान अपनी अहितु की कृपा से स्व माया मतलब अपनी अहितु की कृपा से अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा इस लोक में प्रकट हुए और सुयोग्य स्त्रियों के साथ इस तरह भोग करते रहे मानो वे संसारी कार्यों में व्यस्त हों। मतलब साधारण व्यक्ति जिस प्रकार ग्रस्त जीवन में रहते हैं ना, भगवान भी सेम उसी तरह से रहते थे, लगता ऐसा था। मतलब साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति तो यही सोचेगा कि ये तो संसारी कार्यों में लगा हुआ है, भगवान कैसे हो सकता है। श्री प्रभुपाद जी अत्यंत सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान ने विवाह किया और गृहस्थ की बांति रहे, यह निश्चय ही संसारी कार्य जैसा है। किंतु जब हम यह जान लेते हैं कि उन्होंने 16,108 पत्नियों से विवाह किया और वे उन सबों के साथ पृथक पृथक महलों में रहते थे, तो यह निश्चित रूप से सांसारिकता नहीं रह जाती। अतएव अपनी योग्य पत्नियों के साथ रहते हुए भगवान कभी भी संसारी नहीं है और उन सब के साथ उनका आचरण कोई संसारी यौन संबंध जैसा नहीं समझा जाना चाहिए। जो स्त्रियां उनकी पत्नियां बनी थी वे भी सामान्य स्त्रियां नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान को पति रूप में प्राप्त करना कोटि कोटि जन्मों की तपस्या का परिणाम ही हो सकता है। जब भगवान विभिन्न लोकों में या इस मृत्यु लोक में प्रकट होते हैं तो वे दिव्य लोक में बद्ध जीवों को अपना नित्य दास मित्र जननी जनक तथा प्रियतम बनने की हेतु ही आकर्षित करने के लिए ही अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी ने अत्यंत ही सुंदर बात बताई, बहुत ही सुंदर और समझने की बात है कि भले ही भगवान को कोई साधारण समझे, लेकिन क्या कोई साधारण व्यक्ति 16,108 पत्नियों के साथ पृथक पृथक रह सकता है, क्या वो साधारण हो सकता है, कदापि नहीं, ये कोई साधारण व्यक्ति कर ही नहीं सकता। और उसके बाद श्री प्रभुपाद जी ने कहा कि जो स्त्रियां भगवान की पत्नियां बनी है क्या वो साधारण हो सकती है, हमें हमारे कर्मों के अनुसार माता पिता और भाई बंधु और पति मिलते हैं, जो भी हमने कर्म किए हैं उसके अनुसार, तो क्या वो कोई साधारण कार्य हो सकता है जिसके फलस्वरूप हमें भगवान पति के रूप में मिले, है ना। इस संसार में अच्छा पति प्राप्त करने के लिए भी बहुत बहुत तपस्याएं करनी पड़ती हैं। अगर किसी को अच्छा मतलब एक अच्छा पति मिलता है, अच्छा घराना मिलता है, जो अच्छा लड़का हो, वो भी हम बोलते हैं भाई कितने भाग्यवान है, इसने बहुत पुण्य कर्म किए होंगे जिसको इतना अच्छा पति मिला। तो भगवान जिसको पति के रूप में मिले क्या साधारण स्त्रियां हो सकती हैं, वो कदापि नहीं, उन्होंने बहुत बहुत जन्मों तक तपस्या की होगी और उसी तपस्या का परिणाम के स्वरूप में भगवान ने उन्हें स्वीकार किया। और दूसरी बात जो बहुत ज्यादा मुख्य श्री प्रभुपाद जी ने बताई वो ये कि भगवान इस संसार में जब आते हैं तो भगवान वे दिव्य लोक में बद्ध जीवों को अपना नित्य दास मित्र जननी जनक तथा प्रियतम बनाने हेतु आकर्षित करने के लिए ही अपनी दिव्य लीलाओं को प्रदर्शन, क्योंकि यह संसार जो है वो क्या है, प्रतिबिंब है। वास्तविकता कहाँ है, दिव्य लोक में है। इस संसार में जो भी संबंध है वो सब सत्य नहीं है। वास्तविक संबंध तो केवल भगवान के साथ ही होता है जो कि दिव्य लोक में है। लेकिन इस संसार में जब जीव उस दिव्य संबंध को देखता है ना, कि भगवान के साथ किस प्रकार पुत्र का संबंध निभाया जा सकता है, माता का संबंध निभाया जा सकता है, मित्र का संबंध निभाया जा सकता है, प्रेमी का संबंध निभाया जा सकता है और पति का संबंध निभाया जा सकता है, तो जब इस संबंध को साधारण जीव जब देखता है तो उसके हृदय में आकर्षण उत्पन्न होता है कि काश मेरा भी संबंध भगवान के साथ हो। इस संसार में तो सारे संबंध क्षणिक होते हैं, समाप्त हो जाते हैं, दुख देते हैं, लेकिन भगवान के साथ जिसका संबंध जुड़ जाता है तो वो शाश्वत संबंध है। तो उसी शाश्वत संबंध की ओर आकर्षित करने के लिए संसार में भगवान, जब भगवान विभिन्न लोकों में या इस मृत्यु लोक में प्रकट होते हैं तो वे दिव्य लोक में बद्ध जीवों को अपना नित्य दास मित्र जननी जनक तथा प्रियतम बनाने हेतु आकर्षण करने के लिए ही अपने दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जहां भगवान नित्य सेवा विनिमय का प्रतिदान करते हैं। इस भौतिक जगत में यह सेवा विकृत रूप में दिखती है और असमय ही छिन्न हो जाती है। इस संसार में जो भी ये रिश्ते हैं वो क्या है, विकृत है। विकृत मतलब वास्तविक नहीं है, हमारा वास्तविक कोई किसी के साथ संबंध नहीं है। और एक तो विकृत रूप में है, दूसरा असमय ही क्षण हो जाते हैं, जिससे बहुत ही कटु अनुभव होता है, दुख होता है कि जब कोई भी संबंध या संबंधी हमसे दूर हो जाता है तो मोहग्रस्त जीव प्रकृति के द्वारा बद्ध होकर अज्ञान के कारण समझ नहीं पाता कि हमारे यहाँ के सारे संसारी संबंध क्षणिक हैं और उन्माद से परिपूर्ण हैं, वो दुख देते हैं संसार के सारे संबंध। ऐसे संबंध हमें निरंतर सुखी नहीं रख सकते, किंतु यही संबंध भगवान के साथ स्थापित किए जाएं तो हम इस भौतिक शरीर को त्याग कर वैकुंठ जाते हैं और उनके साथ इच्छित शाश्वत संबंध स्थापित कर सकते हैं। अतएव जिन स्त्रियों के बीच में वे पति रूप में रह रहे थे वे सांसारिक ना होकर उनकी दिव्य पत्नियां थीं और वे सिद्ध भक्ति के द्वारा दिव्य पद प्राप्त कर चुकी थी, यही उनकी योग्यता थी। भगवान परब्रह्म है, बद्ध जीव सर्वत्र ही शाश्वत सुख की खोज करते रहते हैं, ना केवल इस तरह पे अपितु ब्रह्मांड के अन्य लोकों में भी, क्योंकि स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक सफुलिंग होने के कारण जीव ईश्वर की सृष्टि के कोने कोने में विचरण कर सकता है, लेकिन भौतिक गुणों के द्वारा बद्ध होने से वह अंतरिक्ष यानों द्वारा आकाश में विचरण करना चाहता है और अपने गंतव्य तक पहुंच पाने में असफल रहता है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जीव को शाश्वत आनंद चाहिए, शाश्वत सुख चाहिए। जब उसे मृत्यु लोक में नहीं मिलता तो वो अलग अलग लोकों में जाकर उस शाश्वत सुख को खोजने के लिए बहुत प्रयत्न करता है, लेकिन भौतिक गुणों के द्वारा बद्ध होने से वह अंतरिक्षणों द्वारा आकाश में विचरण करता है। फिर वो क्या करता है, आसमान में ये जो एरोप्लेन वगैरह है उनमें जाकर विचरण करता है और अपने गंतव्य तक पहुंच पाने में असफल रहता है, लेकिन उसका गंतव्य क्या है, शाश्वत सुख। तो वो दूसरे लोकों में जाता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण का नियम उसके लिए कैदी की जंजीर जैसा बांधने वाला है। वह अन्य विधियों से कहीं भी पहुंच सकता है, लेकिन चाहे वह सर्वोच्च लोक तक क्यों न पहुंच जाए किंतु उससे वह शाश्वत सुख नहीं मिल पाता जिसकी खोज वह जन्म जन्मांतर से करता रहा है। किंतु जब वह होश संभालता है तो ब्रह्म सुख की खोज यह जानते हुए करता है कि वह जिस असीम सुख की खोज कर रहा है वह इस भौतिक जगत में कभी भी प्राप्त नहीं होने वाला। जब वो अलग अलग लोकों में विचरण कर लेता है जीव आत्मा, तो फिर उसे यकीन आ जाता है, उसे होश आ जाता है कि इस भौतिक जगत में तो वो शाश्वत सुख मिलेगा नहीं, क्योंकि असुखम अनित्यम, ये नित्य नहीं है, यहाँ पर जो सुख भी मिलेगा तो शाश्वत सुख नहीं है। तो फिर अतएव परब्रह्म कभी भौतिक जगत में इस सुख की खोज नहीं करता। जब एक जीव को ये यकीन आ जाता है कि इस संसार में नित्य सुख नहीं है, तो क्या भगवान इतने बेवकूफ हैं कि संसार में या संसार की भौतिक स्त्रियों में सुख खोजने की कोशिश करेंगे? नहीं, भगवान नहीं खोज करते, ना ही उसकी सुख सामग्री इस भौतिक जगत में मिल सकती है, क्योंकि वे नायक हैं और असंख्य जीवों में परब्रह्म हैं, अतएव वे निराकार नहीं हो सकते। वो निराकार नहीं है, वो भगवान का एक साकार स्वरूप है, वे नायक हैं, असंख्य जीवों के परब्रह्म हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं उनका आकार है मगर वो दिव्य है। हमारी तरह उनका आकार नहीं है कि उसके अंदर एक आत्मा हो और बाहर से जो शरीर है वो शरीर से वो प्राकृत कार्य करें, वो इस तरह के नहीं है, लेकिन वो निराकार नहीं है, वे हमारी ही तरह है और उनमें समस्त जीवों की सी प्रवृत्ति पाई जाती है। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत ही मुख्य बात बता रहे हैं कि वो जीवों की प्रवृत्ति उसके अंदर पाई जाती है। जैसे एक जीव को हमेशा आनंद प्राप्त करने की इच्छा होती है ना, तो आनंद प्राप्त करने की इच्छा कहाँ से आ रही है? क्योंकि हम आत्मा हैं और आत्मा किसका अंश है? भगवान का अंश है। तो एक जीव को जब इतना छोटा सा है उसके अंदर भी वो क्वालिटी है। अभी देखो, अगर हमें समुद्र की क्वालिटीज नापनी होगी ना, तो हम पूरा समुद्र टेस्ट नहीं करवाएंगे, उसमें से एक ग्लास पानी उठाएंगे और टेस्ट कराएंगे। उसके अंदर जो क्वालिटीज होंगी, इसका मतलब है समुद्र में भी वो सारा, जैसे नमक है, ये है, ये है, सब होगा। तो उसी तरह से जीव आत्मा क्योंकि भगवान का अंश है, तो उसके अंदर जो क्वालिटीज है वो भगवान के अंदर पर्याप्त परिपूर्ण संपूर्ण मात्रा में है। उसके अंदर अभी गिलास के अंदर वही क्वालिटीज होंगी, लेकिन थोड़ी सी होंगी, बिल्कुल अणु मात्रा में, लेकिन भगवान के पास, क्योंकि भगवान विभू हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वे हमारी ही तरह हैं और उनमें समस्त जीवों की सी प्रवृत्ति पाई जाती है, वे हमारी ही तरह विवाह करते हैं, किंतु उनका विवाह ना तो संसारी है ना हमारे लिए ज्ञानमय है, ज्ञान गम्य है, यानी कि वो भले ही हमारी तरह कार्य करते हैं परंतु संसार में विवाह क्यों किया जाता? इंद्रिय तृप्ति के लिए। लेकिन भगवान का विवाह इस तरह संसारी नहीं है और हमारे लिए ज्ञान गम्य नहीं है, हमारी बुद्धि इस बात को नहीं पकड़ पाएगी, अतएव उनकी पत्नियां संसारी लगती हैं किंतु वास्तव में वे सब दिव्य मुक्त आत्माएं हैं जो अंतरंगा शक्ति की पूर्ण अभिव्यक्तियां हैं। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि भगवान आत्माराम हैं। आत्माराम का मतलब ये नहीं कि वो किसी चीज से आनंद नहीं उठाते, आत्माराम का मतलब है उनको बाहर की किसी चीज से आनंद उठाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो अपनी अंतरंगा शक्ति से आनंद उठाता। तो ये जो सब पत्नियां हैं वो सब दिव्य हैं, मुक्त आत्मा हैं और अंतरंगा शक्ति की परिपूर्ण अभिव्यक्तियां हैं। अंतरंगा शक्ति से भगवान की अपनी शक्ति है, वो अपनी शक्ति से कुछ भी उत्पन्न करके उनसे आनंद उठा सकता है। तो यहाँ पर ये सांसारिक भोग वासना की प्रवृत्ति नहीं है परंतु भगवान की लीला है। तो ये जो पत्नियां हैं उन्होंने भगवान को किस प्रकार से मोहित करने की कोशिश की और फिर भी भगवान को नहीं कर पाई, उसके विषय में आगे सूत गोस्वामी अत्यंत ही सुखद वर्णन कर रहे हैं। कृपया मेरे साथ साथ श्रवण और उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। उद्धाम भाव पिशुनाम अलवल गुहास व्रीरावलोकनिहितो मदनोपियासाम सम्मुह्य चापमजहात् प्रमदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकर्णशोकः। उद्धामभावपिशूनाम् अलवल्गुहास व्रीरावलोकनिहितो मदनोपियासाम सम्मुह्य चापमज हात् प्रमदोत्तमास्ता तमस्ता यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकर्ण शोकः। उत्थाम भाव पिशुनाम अलवल गुहास रीरावलोक निहितो मदनो पियासाम। सम्मुह्य चापमजहात् प्रमदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकर्ण शेकुः। शब्दात् उद्धाम भाव पिशुनो अमल वल्गुहास। उद्दाम भाव मतलब अत्यंत ही गंभीर भाव से पिशुनो, ऐसा भाव जिससे वो उत्तेजित करना चाहते थे, लेकिन अमल निष्कलंक वल्गुहास बहुत ही सुंदर मुस्कान के द्वारा। रीरावलोक, रीरा मतलब आंखों की मतलब नेत्रों से उनको देखते हैं, अवलोक उनको देखना तिरसी चितवन से। निहित जीत गया, मदन यानी कामदेव। अब यहाँ पर क्या रीरा अवलोक निहितो मदनो पियासा, मतलब वो इतनी सुंदर स्त्रियां थी कि उनका जो हाव भाव था वो अपने हाव भाव से उद्धाम भाव पिशुना अमल, उन अपने हाव भाव को दिखाकर, अपनी तिरछी चितवन को दिखाकर, अपने नेत्रों को दिखाकर वो कामदेव भी इसी स्त्रियों को देखकर परास्त हो जाता है और अपना धनुष एक तरफ रख देता है। वो अब देखो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, रीरावलोक निहितो मदनो पियासाम, तो कामदेव भी उनसे विचलित हो जाता है। और कामदेव को किसने परास्त किया था, शिव जी को कामदेव ने भस्म कर दिया था ना, लेकिन शिव जी भी जो है ना उनकी सुंदरता से मोहित हो सकते थे, इतनी ज्यादा उन, क्योंकि वो स्वयं भगवान की शक्तियां थी। तो भगवान की शक्ति कौन है, एक भगवान का ना अपना ही स्वरूप है मोहिनी, तो शिव जी को भी मोहिनी ने परास्त कर दिया था। तो वो शिव जिसने कामदेव को परास्त कर दिया था, मोहिनी ने उनको परास्त कर दिया था। तो इसका मतलब है कि ये सब में इतनी क्वालिटी है क्योंकि वो भगवान की अंतरंग शक्ति है कि वो शिव जी को भी परास्त कर सकते हैं। परंतु सम्मुह्य चाप मजहात प्रमदोत्तम आसा मास्ता, यानी सम्मुह्य यानी कि विजित होकर वो कामदेव भी बगैर लड़ाई के विजित हो जाता है, मतलब पराजित हो जाता है चापम, और अपना धनुष अजहात त्याग देता है। प्रमद स्त्री, इन स्त्रियों के उत्तमा, क्योंकि इतनी उत्तम कोटि की स्त्रियां थी ये सारी जो भगवान की रानियां थी, वो इतनी सुंदर थी, उनके अंदर इतना मतलब उनके हाव भाव, उनकी सुंदरता इतनी थी कि वो कामदेव को अपना धनुष त्यागने पर विवश कर देती थी। फिर भी यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकर्ण शेकः। यस्येन्द्रियं जिसकी इंद्रियों, यानी यस्य यानी जिसकी इंद्रियम मतलब इंद्रियों को विमथितुं विचलित करने के लिए कुहकय हाव भाव द्वारा न शेकु मतलब फिर भी वो समर्थ नहीं थी, यानी भगवान ने भगवान के मन को विचलित करने के उनके अंदर सामर्थ्यता नहीं थी। ऐसा नहीं था कि भगवान उनके हाव भाव को देखकर, उनकी चंचल चितवन को देखकर उत्तेजित हो जाते थे और इसलिए वो स्त्रियों के साथ शादी करते थे। भगवान ने उनके द्वारा पराजित, उनके प्रेम के द्वारा पराजित होकर, सॉरी उनके हाव भाव के द्वारा पराजित होकर उनसे विवाह नहीं किया, बल्कि भगवान ने उनके निश्चल प्रेम को देखकर उन्हें अपनाया, ना कि अपनी इंद्रियों को सुख पहुंचाने के लिए उन्हें अपनाया। और ये तो बस भगवान की लीला है, वो समर्थ हैं, तो गृहस्थ लीला भी कर रहे हैं तो एक दो के साथ नहीं, 16,108 पत्नियों के साथ करा रहे हैं। तो एक तरह से वो साधारण मनुष्य को बता रहे हैं कि मैं कोई साधारण प्राणी नहीं हूँ, मैं एक साथ 16,108 स्वरूप धारण करके समस्त पत्नियों को आनंद प्रदान कर रहा हूँ, तो क्या मैं साधारण हूँ। लेकिन फिर भी भगवान की असाधारणता को ना देखकर, क्योंकि उनकी बुद्धि इस बात को नहीं पकड़ पाती है, तो क्या करते हैं, वो भगवान के अंदर दोष ढूंढते हैं। अनुवाद देखिए, यद्यपि रानियों की मृदु मुस्काने तथा बांकी चित्वने अत्यंत विमल तथा उत्तेजक थीं, जिससे साक्षात कामदेव मोहित होकर अपना धनुष त्याग करने के लिए बाध्य हो सकते थे। यहाँ तक कि अत्यंत सहष्णु शिव भी उनके शिकार हो सकते थे, तो भी वे अपने समस्त हाव भाव तथा आकर्षण से भगवान की इंद्रियों को विचलित नहीं कर सकी। यस्य इंद्रियं विमथितुं कुहकायनशे कुह। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से हमें तात्पर्य में इस संसार के काम के विषय में बताएंगे। इस संसार में जो कुछ भी है वो स्त्री और पुरुष के आकर्षण के कारण ही है, लेकिन ये आकर्षण वो नहीं है जो भगवान और उन स्त्रियों में था। इसको श्रील प्रभुपाद जी इतने सुंदर रीति से समझाएंगे, हम पूरा प्रयास करेंगे समझने का। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, मोक्ष पथ या भगवत धाम जाने के पथ सदैव स्त्री संसर्ग का निषेध करता है और पूर्ण सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म स्त्री की संगत के लिए मना करता है या प्रतिबंध लगाता है। अब देखो, हमारे पास वर्णाश्रम धर्म है, उसमें चार आश्रम है, ठीक है। क्या है? ब्रह्मचर्य, ग्रस, वानप्रस और सन्यास। अब उनमें से चार में से तीन जो है वो स्त्री संघ के लिए एकदम वर्जित है। ब्रह्मचर्य के लिए, वानप्रस्थ के लिए और सन्यास के लिए वर्जित है। गृहस्थ आश्रम में सिर्फ थोड़े समय के लिए, 25 से 50 तक थोड़े समय के लिए स्त्री संघ की अनुमति दी गई है, क्योंकि वो भी उनके लिए कि जो नहीं कर सकते, जिनको ऐसा लगता है कि हम पूरा डायरेक्ट से ब्रह्मचर्य से सन्यास तक नहीं जा सकते, तो उनको थोड़ी सी अनुमति, जैसे सीधा पथ जा रहा है किसका, ब्रह्म परब्रह्म या परमार्थ का, भगवत धाम का जो पथ जा रहा है वो सीधा है, उसमें स्त्री संघ की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन जो समझता है कि सीधा सीधा चलना मेरे लिए संभव नहीं, तो उसको थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए साइड में थोड़ा सा बोला, ठीक है तुम चक्कर लगा के इधर से आ जाओ, फिर अपने रास्ते पे आओ। फिर ग्रस्त के लिए उसको थोड़ा सा मतलब अनुमति दी जाती है, फिर वापस से उसको वानप्रस्थ से संन्यास की ओर आना है। तो यहाँ पर बताया कि या तो स्त्री संगति के लिए बिल्कुल मना करता है या प्रतिबंध लगाता है, है ना। तो फिर जो व्यक्ति 16,000 से अधिक पत्नियों से अनुरक्त हो, उसे भगवान कैसे मान लिया जाए, है ना। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है, जब एक साधारण व्यक्ति के लिए ये संघ मना किया जाता है, तो फिर वो भगवान कैसे हो सकता है, उसे भगवान कैसे माने, ये ऐसा प्रश्न कौन कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यह प्रश्न उन जिज्ञासियों द्वारा उठाया जा सकता है जो वास्तव में परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को जानने के लिए उत्सुक हैं। वो जो जानना चाहते भगवान के विषय में, तो वो सोच सकते हैं कि भगवान को फिर ऐसा काम करना चाहिए था। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ही नैमिषारण्य के मुनियों ने इस श्लोक में तथा अगले श्लोकों में भगवान के दिव्य स्वभाव के विषय में विचार विमर्श किया है। यहाँ यह स्पष्ट है कि स्त्रियों के आकर्षक हाव भाव जो कामदेव को या परम सहिष्णु शिव जी को भी जीत सकते हैं, भगवान की इंद्रियों को नहीं जीत सकते। यहाँ साफ साफ बताया है, वे सुखदेव गोस्वामी साफ साफ बता रहे हैं कि वो हाव भाव जो कामदेव को जीत सकते हैं, जो शिव जी को पराजित कर सकते हैं, या सेन्द्रियम विमति तुम कुह कहन शोक, लेकिन शेक, वो भगवान की इंद्रियों को जीतने में समर्थ नहीं है। तो भगवान की इंद्रियों को नहीं जीते सकते, कामदेव का एकमात्र कार्य क्या है, कामदेव इस संसारी काम वासना को उद्दीप्त करना चाहता है। सारा ब्रह्मांड कामदेव के बाण से विचलित होकर इधर उधर विचरण कर रहा है। विश्व के सारे कार्यकलाप स्त्री तथा पुरुष के आकर्षण के कारण है, ही गतिशील है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि संसार में जो भी कार्य हो रहे हैं, वो उनका एक ही केंद्र बिंदु है, क्या, स्त्री और पुरुष का आकर्षण। इसीलिए सब कुछ गतिशील है। पुरुष अपनी रुचि की सहचरी खोजता रहता है और स्त्री उपयुक्त पुरुष की तलाश में रहती है। भौतिक उद्दीप्तन की यह शैली है। ज्यों ही पुरुष का संयोग स्त्री से हो जाता है, त्यों ही यौन संबंध के द्वारा जीव दृढ़ भौतिक बंधन में बंध जाता है। परिणाम यह होता है कि घर, मातृभूमि, संतान, समाज तथा मैत्री एवं संपत्ति संग्रह के प्रति नर नारी का आकर्षण उसके संभ्रांत कार्य क्षेत्र बन जाते हैं। बस क्या है, एक स्त्री पुरुष की तलाश में, पुरुष स्त्री की तलाश में जब उनको मिल जाते हैं दोनों आपस में, तो क्या होता है, संबंध स्थापित होते हैं। घर, मातृभूमि, संतान, समाज, मैत्री संबंध स्थापित हो जाते हैं और नर नारी का आकर्षण सम्राट कार्य क्षेत्र बन जाते हैं। बस यही कार्य क्षेत्र है और इस तरह नाशवान संसार के प्रति मिथ्या किंतु अनथक आकर्षण प्रकट होता है। ये आकर्षण मिथ्या है लेकिन इसमें इतना घिर जाता है व्यक्ति कि उससे बाहर नहीं निकल सकता फिर। अतः जो लोग भगवत धाम जाने के लिए मोक्ष पथ पर हैं, विशेषकर उनके लिए उनके लिए शास्त्रों का आदेश है कि वे इस प्रकार के भौतिक आकर्षण के साज सामानों से बचे रहें, क्योंकि अगर वो भगवत धाम जाना चाहते हैं और फिर भी उनका आकर्षण यदि स्त्री के अंदर हो गया तो फिर क्या होगा, फिर वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे, वो यहीं पर फंस कर रह जाएंगे। कौन से में, जो अनथन अनित्य है लेकिन ये संघर्ष जो है वो कंटिन्यूस चलता रहेगा। ये आकर्षण खत्म होगा नहीं नर नारी का, तो फिर जो वास्तव में सीरियस हैं और भगवत धाम जाना चाहते हैं तो शास्त्रों में उनके लिए क्या आदेश है कि इस प्रकार के भौतिक आकर्षण के साज सामान यानी स्त्रियों से बचे रहे। ऐसा तभी संभव है जब भगवत भक्तों अर्थात महात्माओं की संगति की जाए। यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी उपाय बताते हैं कि अगर हम भगवान की शुद्ध भक्तों का संग करेंगे तो हमें स्त्री संग की इच्छा नहीं रहेगी। अब यहाँ शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, कामदेव जीवों पर अपना बाण चलाकर उन्हें विपरीत लिंग के पीछे पागल बनाता है। अभी कामदेव का क्या काम ही यही है ना कि वो क्या करता है, अपोजिट सेक्स की ओर हमारा आकर्षण बढ़ाता है, वो बाण चलाता रहता है। लेकिन यदि हम भक्तों की संगत में होंगे, भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे, भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे, तो कामदेव का बाण जो है, क्योंकि कामदेव कौन है, वो उसको मदन बोलते हैं, और भगवान कौन है, मदन मोहन। जो भगवान का नाम और भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं, तो भगवान ने क्योंकि काम को या मदन को मोहित कर दिया, तो भगवान का नाम भी जहाँ पर होता है वहाँ पर ये कामदेव के जो बाण है ना वो असर नहीं करते हैं। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, कामदेव जीवों पर अपना बाण चलाकर उन्हें विपरीत लिंग के पीछे पागल बनाता है। और कैसे लोगों के साथ उनका ना आकर्षण उत्पन्न करता है, चाहे वो सुंदर हो या नहीं। ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम सुंदर लोगों के साथ नहीं मिले, कैसा भी अपोजिट सेक्स है, तो फिर ना उसके साथ हमारा आकर्षण कामदेव बढ़ाता है। कामदेव का प्रभाव उस बर्बर समाज में भी देखा जाता है जो सभ्य राष्ट्र की निगाहों में कुरूप होते हैं, जो काले होते, बिल्कुल काले काले होते ना, उसमें भी है ना प्रेम होता है नर नारी का आपस में। तो श्री प्रभुपाद जी को कह रहे हैं, इस तरह कामदेव का प्रभाव कुरूप से कुरूप रूपों में देखा जाता है। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि कामदेव का जो प्रभाव है वो कुरूप से कुरूप रूपों में भी देखा जाता है। भले वो सुंदर नहीं हो लेकिन कामदेव के प्रभाव से एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो फिर परम पूर्ण सुंदरियों के लिए क्या कहा जाए। शिव जी भी, जिन्हें परम सहिष्णु समझा जाता है, कामदेव के बाण द्वारा आहत हुए, क्योंकि वे भगवान के मोहिनी अवतार के पीछे दीवाने हो गए थे और उन्होंने अपनी हार मान ली थी। तो भी वही कामदेव लक्ष्मी के हाव भाव तथा कटाक्षों से विमोहित हो गया और हताश स्थिति में उसके हाथ से अपने आप धनुष बाण छूट गए थे। भगवान कृष्ण की रानियों की सुंदरता और उनका आकर्षण ऐसा था, फिर भी वे भगवान की दिव्य इंद्रियों को विचलित नहीं कर पाई। इसका कारण यही है कि वे पूर्ण आत्माराम हैं, उन्हें आत्मतुष्टि के लिए किसी बाह्य सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए रानियां अपने स्त्रियोचित आकर्षण के द्वारा भगवान को तुष्ट न कर पाकर अपने एकनिष्ठ प्यार
तथा सेवा से उन्हें तुष्ट कर सकें। यहाँ श्री प्रभुपाद जी साफ साफ बता रहे हैं कि ऐसा नहीं था कि रानियों के हाव भाव से भगवान जो है वो आकर्षित हो गए थे, नहीं, भगवान उनके एकनिष्ठ, उनके विमल प्रेम, उनके निश्चल प्रेम से, उनकी सेवा से भगवान प्रसन्न हुए थे। क्योंकि भगवान जो है वो भक्त की भक्ति से प्रसन्न होते हैं, वे मात्र अनन्य दिव्य प्रेमा भक्ति से ही भगवान को प्रसन्न कर सकी और भगवान ने भी बदले में पत्नियों के रूप में उनके साथ आचरण किया। भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपत्यन्ते तांस्तथैव भजामि अहम्। जिस स्वरूप में मुझे चाहो कि स्वीकार करना, मैं वह स्वरूप धारण कर लूंगा। तो भगवान को वो सब पति रूप में जानती थी, तो भगवान ने उनके साथ वही आचरण किया। भगवान ने केवल उनकी अनन्य सेवा से प्रसन्न होकर पत्नी व्रत पति की भांति उन्हें प्रतिदान किया, अन्यथा उन्हें इतनी सारी पत्नियों का पति बनने से क्या मिलने वाला था। वे हर एक के स्वामी यानी पति हैं, किंतु जो उन्हें इस रूप में मानता है वे उसके साथ वैसा ही प्रतिदान करते हैं। भगवान के प्रति अनन्य प्रेम की तुलना कभी संसारी काम वासना से नहीं की जा सकती, नहीं की जानी चाहिए। यह नितांत दिव्य है। रानियां भी जिस स्वाभाविक स्त्रीयोचित ढंग से व्यवहार कर रही थीं, वह भी दिव्य था, क्योंकि वे अपने भावों को दिव्य आनंदवश ही प्रकट कर रही थी। अब यहाँ पर जो हाव भाव लिखे हैं सुत गोस्वामी ने, उद्धाम भाव पिशुनम अलवल गुहा से, जो वो बले तिरछिने गांव से देखती थी, हंसती थी, मुस्कुराती थी चितवन से, तो ये सब क्यों था? क्योंकि वे अपने भावों को दिव्य आनंदवश ही प्रकट करती थी। पिछले श्लोक में यह बताया जा चुका है कि भगवान संसारी पति जैसे प्रतीत हो रहे थे। ऐसा बताया था ना सुत गोसा, भगवान प्राकृतो यथा, कि भगवान ऐसा लगता था कि साधारण पति हैं, जिस तरह प्राकृतिक पति होते हैं वैसे ही प्रतीत होते थे, लेकिन वास्तव में अपनी पत्नियों के साथ उनका यह संबंध दिव्य, शुद्ध तथा भौतिक प्रकृति के गुणों से मुक्त था। इसीलिए तो यहाँ सुत गोस्वामी ने कहा, यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकर्णशेकः। यहाँ बता रहे हैं सुत गोस्वामी कि भगवान आत्मतुष्ट हैं। भगवान उन स्त्रियों के द्वारा जरा भी भगवान के मन को विचलित नहीं किया जा सका। अभी देखिए यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा, संसार में क्या होता है, एक स्त्री पुरुष के मन को विचलित कर सकती है। एक स्त्री, चाहे वो कितना ही विश्वामित्र की तरह बड़ा ध्यानी क्यों न हो, लेकिन एक अगर सुंदर स्त्री हाव भाव दिखाए तो उसका मन विचलित हो जाता है। और यहाँ पर 16,108 पत्नियां संपूर्ण हाव भाव दिखाकर अपना तन मन धन उनको समर्पित करके भी उन सब से भगवान को विशेष नहीं कर सकी, केवल अपने निश्चल प्रेम के द्वारा, अपने शुद्ध प्रेम और भक्ति के द्वारा भगवान को अपने ओर आकर्षित किया। यानी कि भगवान को ये सब वस्तुओं के द्वारा आकर्षित नहीं किया जा सकता, भगवान को केवल हम शुद्ध प्रेम के द्वारा आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि भगवान दिव्य हैं। भगवान के अंदर ये काम वासना इत्यादि नहीं है, लेकिन अब भगवान के साथ जो भी निश्चय प्रेम जिस भाव से करता है, तो भगवान उसी भाव से उनको प्रतिदान करते हैं। और भगवान को ये लीला भी दिखानी है इस संसार में कि जो भी संबंध है तुम मुझसे जोड़ सकते हो, मैं ही तुम्हें वास्तविक आनंद प्रदान कर सकता हूँ इस संसार में। जिसके साथ भी जो संबंध तुम्हारा, जो प्रेम का आकर्षण होगा वो अनित्य होगा, वो सुख नहीं प्रदान करेगा। तो जो शुद्ध भक्त हैं उनको भौतिक व्यक्तियों से अपना प्रेम हटाकर भगवान के श्री चरणों में वो सब प्रेम समर्पित करना चाहिए। और भगवान अवश्य हम सबको स्वीकार करेंगे। और इस संसार में क्या है, हमें अपने कर्मों के अनुसार अपने नियत कर्म करने हैं। अपने जो कार्य हमें सौंपे गए हैं, भगवान ने जो ड्यूटीज दी हैं उनको निभाना है। लेकिन अपने मन में, मन मना भव मद भक्त, तो भगवान कहते हैं मन में केवल मेरा चिंतन करो, उससे क्या करूंगा, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसि मे, क्योंकि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, इसे तुम भी मुझे बहुत प्यारे हो, इसे मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं अवश्य तुम्हें अपने अपना बना लूंगा, स्वीकार कर लूंगा, अपने पास बुला लूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छी रीति से कर सकूं। हरे कृष्ण।